concluded that the highest perfection one can achieve by discharging the duties prescribed for one's own occupation according to caste divisions and orders of life is to please the personality of Godhead. Purport. Is there anyone out there that requires English, that doesn't understand Hindi? Everyone,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare
Hare. Srila Prabhupada was asked one time, what is the important verse in Bhagavatam? Which verse would you recommend as one of the most important Bhagavatam verses? Prabhupada said, he quoted this verse here.
तो प्रभुपाद जी से एक बार पूछा गया कि सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कौन सा है भागवतम में, आप किसको उद्धृत करेंगे? तो प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के बारे में बताया कि ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है भागवतम का.
And why? Because it explains the goal of life really is to please the personality of Godhead.
क्योंकि जीवन का जो लक्ष्य है वो भगवान को प्रसन्न करना है, ये इसमें बताया गया है.
And whatever social or spiritual order one may find themselves in, the goal is the same, is to execute one's duties, either material or spiritual, with the desire to offer the results and to please the Lord.
ये चाहे कोई किसी भी वर्ण में हो, किसी भी आश्रम में हो, लेकिन कार्य ऐसा होना चाहिए जिससे कि कार्य का जो फल है वो कार्य का जो फल है वो भगवान को प्रसन्न करे.
When Krishna is pleased, everything is what we say becomes successful.
और जब कृष्ण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो सभी चीजें सफल हो जाती
हैं. Krishna is not pleased, or when one fails to please Krishna, then there's another verse that's coming up. It says, maybe it's the one before it. The occupational activities a man performs according to his own position are only so much useless labor if they do not provoke attraction for the message of the personality of Godhead. So the word is shrama eva hi kevalam. Shrama means useless labor. Him, certainly, eva only, kevalam, entirely. All of one's activities, if they're not directed towards the Lord, are useless, no matter how grandiose or how materially important they may be given.
और बताते हैं कि अगर कृष्ण भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं तो चाहे हम कोई भी कार्य करें, चाहे भौतिक दृष्टि से कैसा भी कार्य हो, वो श्रम एव ही केवलम, वो केवल एक श्रम रह जाता है और वो कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर पाता.
Now here there is a description of what is called the vanashram system.
तो यहाँ पे वर्णाश्रम पद्धति की जो व्याख्या है बताई गई है.
What is this vanashram system?
ये वर्णाश्रम पद्धति क्या है?
Is it created by man?
क्या यह मनुष्य द्वारा बनाया गया है?
Actually, in the fourth chapter of Bhagavad Gita, Krishna says, "Chaturvarnyam maya srishta guna karma vibhagasya tasya kartaham api mam vidye arkartam avyavyam." He says, translation, according to the three modes of material nature and the work ascribed to them, the four classes of human society are created by me. And although I am the creator of this system, you should know that I am not the non-doer, being unchangeable.
तो भगवान बताते हैं कि ये जो चार वर्ण और ये जो पूरा समाज का जो विभाग है, ये गुण और कर्म के आधार पे, जो तीनों गुणों के द्वारा जो मिलते हैं लोगों को, उनके आधार पे किया गया है, और ये भगवान स्वयं ही करते हैं.
सो कृष्णा हैज क्रिएटेड दिस सोशल सिस्टम.
तो कृष्णा ने यह सामाजिक पद्धति बनाई है.
एंड बाय गिविंग सर्टन मटेरियल प्रोपेंसिटीज विद इन फोर कैटेगोरीज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल.
और जो भौतिक रुझान और झुकाव होते हैं हमारे, उसको भगवान ने अलग अलग जगह विभाग करके डाला हुआ है.
द ब्राह्मण्स, द क्षत्रियस, द वैश्यस, द शूद्रस.
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र.
Brahmins are those born and qualify themselves as the educated or priestly class.
Brahman jo hote hain aise log jo ki padhe likhe hain aur jinki aisi yogyata hai ki wo purohit ka karya kar sake.
A Brahman's occupation is patan patan yajan yajan dana pratigraha. They are meant to know the scriptures and teach the scriptures. They are meant to worship the Lord and teach others how to worship the Lord. They are meant to give charity and also accept charitable gifts.
तो ब्राह्मण का जो कार्य है पठन पाठन यजन याजन दान परिग्रह कि शास्त्रों को पढ़ना, दूसरों को सिखाना, खुद पूजा करना भगवान की और दूसरों को पूजा सिखाना, दान लेना और दान देना, ये ब्राह्मण के
कार्य. These are the activities of a Brahman.
ये सब ब्राह्मण के कार्य हैं.
Not to work in a factory.
न कि फैक्ट्री में जाके काम करना.
और पुल रिक्शा.
और रिक्शा खींचना.
दिस इज नॉट ब्राह्मण.
ये ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं.
हाँ. द एक्टिविटीज ऑफ अ क्षत्रिय.
क्षत्रिय के क्या कार्य हैं?
क्षत्रिय मीन्स क्षत्रिया. क्षत मीन्स हार्म एंड त्रिया मीन्स टू गिव प्रोटेक्शन. दे आर मेंट टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी फ्रॉम आउटसाइड एनिमीज.
तो क्षत्रिय का मतलब छत और त्रिय.
They call the martial class, the warrior class.
तो वो योद्धा लोग होते हैं जो कि समाज को सुरक्षा प्रदान करते हैं.
They are also administrators, organizers, managers.
वो प्रशासन चलाते हैं और बड़े बड़े व्यूहों की रचना करते हैं और व्यवस्थापन भी करते हैं.
They have fine understanding of how to organize things in such a way that the society will be productive, progressive.
उनको यह भी पता है कि समाज की व्यवस्था ऐसी करें कि जिसे समाज जो है उत्पादनशील हो और क्रियाशील हो.
They're not macho men with big muscles who go around beating everybody up.
बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होने चाहिए कि जिनके शरीर बहुत तगड़ा है और दूसरे लोगों को जाके पिटाई कर रहे हैं.
That's not kshatriya.
ये क्षत्रिय का मतलब नहीं है.
Kshatriya is a protector, not an aggressor.
क्षत्रिय जो है समाज को सुरक्षा देते हैं, न कि समाज में आतंक फैलाते हैं.
He protects against aggression, not he is aggressor.
वो उग्रवादियों के विरोध में सुरक्षा प्रदान करते हैं, न कि वो खुद ही ऐसा आतंक उत्पात मचाए.
He also gives in charity.
वो दान भी देते हैं.
And if he receives charity, he uses it to further his occupational work, not for his personal interest.
और अगर उनको दान मिले तो उनके कार्यों को बढ़ाते हैं, न कि वो अपने जीवन में उसको लगाते हैं.
द थर्ड इज द वैश्यस. वैश्यस इज मर्केंटाइल. दे आर एंगेज्ड इन बैंकिंग, ट्रेडिंग एंड काउ प्रोटेक्शन.
तो तीसरे वैश्य लोग हैं जो कि बैंकिंग, जो वित्त प्रबंधन करते हैं और गायों की सुरक्षा प्रदान करते हैं और कृषि करते हैं.
एंड देयर आल्सो They are agriculturalists. They are farmers.
और वो कृषि का भी कार्य करते हैं.
And their occupation is to provide foodstuffs for the society.
और वो समाज को अन्न प्रदान करते हैं.
They also may give in charity.
वो दान भी देते हैं.
But if they receive charity themselves, they use it to put it back into their work.
और अगर उनको दान मिले तो वो उनके कार्यों में लगाते हैं.
एंड दे आर कॉल्ड, वेल वी गेट टू दैट इन अ मिनट, बट द पॉइंट इज दैट दे आर व्हाट इट मींस द एग्रीकल्चरलिस्ट. दे डू ट्रेड, दे डू बैंकिंग, यू माइट से द बिजनेसमैन.
तो एक व्यवसायी के जैसे होते हैं जो कि व्यापार करते हैं, वित्त प्रबंधन करते हैं, कृषि करते हैं इत्यादि.
देन वी हैव द शूद्रस.
और फिर शूद्र लोग हैं.
Sudras have no, what we say, talents. They simply assist the three other classes in their occupations.
शूद्रों का कोई विशेष ऐसा कार्य नहीं है. वो उनका कार्य बाकी के तीन समाज के विभाग की सहायता, उनकी सेवा कर.
Depend on the others for their livelihood. They receive some pay, some charity from others.
वो दूसरों के ऊपर अपने जीवन निर्वाह के लिए निर्भर होते हैं.
Common workers, common laborers.
तो सामान्यतः जो श्रमिक लोग होते हैं.
Now this, Krishna has created this system. It's not an artificial system by created by man. It's created by a certain inborn material quality that a person has that is developed by developing that quality in their life.
तो ये कृष्णा ने बनाया है, कोई ये कृत्रिम रूप का पद्धति नहीं है. और ये जो जीवन में व्यक्ति को जो जन्म के कारण जो जिनकी विशेष रुझान या विशेष कार्यशैली होती है उसके हिसाब से इसका विभाजन किया गया है.
एंड द पर्पस ऑफ दिस इज अ सोशल अरेंजमेंट.
और इसका लक्ष्य जो है वो समाज को विभाग में ऐसे अलग अलग ठीक से रखना है.
जस्ट लाइक इन द बॉडी यू हैव द हेड, यू हैव द आर्म्स, यू हैव द स्टमक, यू हैव द लेग्स, द डिफरेंट एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द बॉडी.
जैसे कि शरीर में सर होता है, हाथ होता है, पेट होता है, पैर होते हैं, तो अलग अलग रचना है शरीर की.
The Brahmins are the heads, the Kshatriyas the arms, the Vaishyas the belly, the Sudra the legs, make up the whole social body.
तो जो समाज की जो रचना है उसमें ब्राह्मण सर के जैसा है, क्षत्रिय बाहु के जैसा है, वैश्य पेट के जैसा है और शूद्र जो है वो पैर के जैसे.
And when a society is organized according to these natural propensities, then there is smooth social intercourse and society moves forward.
तो इस तरह से अगर रचना होती है तो समाज जो है बहुत ही आराम से चलता है और इसकी रचना अच्छी रहती है.
Now, it's not that one is born a Brahmin or a Kshatriya or a Vaishya or Sudra. One is born into certain families where propensities are inclined to those ways. In other words, one may be born in a Brahmin family, but one is not a Brahmin unless they developed the Brahminical qualities, Brahminical activities.
तो ये जन्म से नहीं होता है कि कोई ब्राह्मण के घर में जन्म ले तो ब्राह्मण बन जाएगा, बल्कि जब व्यक्ति कोई अपने गुण ऐसे प्रकट करता है तो उन गुणों के आधार पे उसको उस समाज में विभाजित करके रखा जाता है, न कि केवल ब्राह्मण के घर में जन्म लेके कोई ब्राह्मण बन सकता है.
It's not by birth, but by quality.
ये जन्म से नहीं बल्कि गुणों पे है.
It's not that because I'm born in a Brahmin family and I've been given two-piece thread, I'm a Brahmin.
ऐसा नहीं कि आप ब्राह्मण परिवार में कोई जन्म ले और दो पैसे का जनेऊ लटकाए तो वो ब्राह्मण बन जाएगा.
No, one has to prove themselves by their qualifications, by their activities.
तो व्यक्ति को अपने गुणों के द्वारा, अपने क्रियाओं के द्वारा यह सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि वो ब्राह्मण है.
If one is born in a Brahmin family and they are working like a Sudra, they are Sudra.
अगर कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म ले और शूद्र के जैसा कार्य करे तो वो शूद्र कहलाएगा.
A Brahmin will not take occupation from anyone. A Brahmin will not work for anybody. A Brahmin will starve before they take up the occupation of begging like a dog.
ब्राह्मण जो है वो दूसरे का कार्य कभी नहीं लेगा, कभी भी नौकरी नहीं करेगा किसी के यहाँ जाके. वो भूखा रह के मर जाएगा, लेकिन ऐसा भीख मांगने का ऐसा कार्य नहीं करेगा.
Brahmin lives on the charity of society. He does two things. He gives transcendental knowledge. He gives material knowledge also, but he is not a beggar.
ब्राह्मण जो है वो दान लेते हैं, लेकिन इसके बदले में आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक भिखारी हैं.
So, now the Brahmins are meant to lead society.
तो ब्राह्मण जो है वो समाज को नेतृत्व करने के लिए होते हैं.
So therefore, Brahmins must teach spiritual and material knowledge both.
तो इसलिए ब्राह्मण जो है भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ज्ञान का शिक्षण उन्हें देना चाहिए.
And by teaching spiritual knowledge, then society actually develops in what we say the right way.
तो आध्यात्मिक ज्ञान देने के कारण समाज जो है वो सही रास्ते पे चल सकता है.
If one has what we say a perfect social arrangement, but there's no spiritual foundation, or spiritual direction, then it is simply a useless society.
तो अगर किसी समाज में केवल सामाजिक रचना है लेकिन आध्यात्मिक आधारभूत नहीं है, आधारशिला नहीं है, तो वो कार्य नहीं करेगी.
So the Brahmins are meant to give vision, direction, knowledge towards what we say Brahma Jigyasa.
तो ब्राह्मण जो है समाज को एक दिशा दिखाते हैं, एक मार्ग दिखाते हैं और उसको सही रास्ते पे ले चलने के लिए दिखाते हैं, जिसको ब्रह्म जिज्ञासा भी कहते हैं.
So this social order is essential in order to practice the spiritual orders.
तो ये सामाजिक रचना जरूरी है आध्यात्मिक जीवन को अपनाने के लिए.
Because the spiritual foundation is the goal of life.
क्योंकि आध्यात्मिक आधारशिला ही जीवन का लक्ष्य है.
Everyone must take up devotional service to the Lord.
हर व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान की भक्ति को अपने जीवन में अंगीकार करे.
The Brahmins, the Kshatriyas, the Vaishyas, the Sudras, everyone, even those lower than the Varnashram system, are duty bound to take up devotional service.
चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो या इनसे भी नीचे हो, लेकिन सब सभी का पहला कर्तव्य है कि भगवान की भक्ति करें.
It's not that spiritual practice is only for the Brahmins and nobody else.
ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक क्रिया केवल ब्राह्मण के लिए और औरों के लिए नहीं.
Or those who are born in lower castes, they cannot practice because they don't have what we say brahminical birth.
तो ऐसा नहीं कि जो नीच कुल में जन्म ले रहे हैं उन वो भक्ति नहीं कर सकते क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं हुए.
Prabhupada writes in the purport here that this social system is not for exploitation of one varna over another.
तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो सामाजिक व्यवस्था इसलिए नहीं है कि एक समाज एक भाग जो है दूसरे का शोषण करे.
The degradation of India has been due to the Brahmins not living up to the proper standards.
भारत के पतन का कारण है कि ब्राह्मण जो हैं वो अपने स्तर पे नहीं जी पा रहे हैं.
The Brahmins have pushed out all the other social classes and they consider themselves the only one qualified to practice spiritual life.
तो ब्राह्मणों ने बाकी लोगों को धकेल दिया और कहा कि हम ही लोग केवल योग्य हैं आध्यात्मिक आध्यात्मिकता को अपने जीवन में प्रयास करने के लिए.
इफ यू केयरफुली स्टडी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया यू विल सी दैट इफ यू आर शूद्र और समवन एल्स यू आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस और इवन गो इनटू सर्टेन टेंपल्स बिकॉज ऑफ योर सो कॉल्ड लोअर बर्थ.
तो अगर भारत के इतिहास को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि शूद्रों को या अन्यों को कभी कभी मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता था.
Prabhupada was talking, he said, sometimes it was so bad at one time that if a sudra was walking along the street he would have to say, I am a sudra and I am walking along the street, please close your doors.
तो स्थिति ऐसी थी कि शूद्र कभी कभी रास्ते पे चलते थे तो उनको चिल्ला के बोलते हुए जाना पड़ता था कि मैं शूद्र हूँ और जा रहा हूँ, आप लोग आपके आपके दरवाजे बंद कर लीजिए.
Because if a Brahmin would see a sudra, then his everything in his house would be contaminated, and then he would have to purify the whole house.
क्योंकि अगर ब्राह्मण शूद्र को देख लेते थे तो ऐसा माना जाता था कि ब्राह्मण जो है वो अपवित्र हो गए हैं, पूरा घर अपवित्र हो गया है.
But this was not Krishna's plan.
लेकिन ये कृष्ण का योजना नहीं है.
The social orders are meant simply for division, but everyone is meant to practice what we say spiritual life.
सामाजिक व्यवस्था जो बनाई, विभाजन जो किया गया है वो रचना के आधार पर किया गया है, लेकिन आध्यात्मिकता को प्रैक्टिस करने के लिए रोका नहीं गया.
On the spiritual platform, everyone is equal.
आध्यात्मिक स्तर पर हर कोई समान है.
On the material platform, there is always divisions and inequality.
और भौतिक स्तर पर हमेशा ऊपर नीच होता ही रहेगा.
But this inequality should not be exploited simply for material gain or for material position.
लेकिन इस ऊंच नीच को भौतिक लाभ लेने के लिए शोषण नहीं किया जाना चाहिए.
Prabhupada explains that the growth of the Mohammedans in India were due to the Brahmins.
तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो मुसलमान लोग हैं उनके कारण ये ब्राह्मण हैं.
When the Muslims invaded India, they took over some what we say political posts.
तो जब मुसलमान लोग भारत आए आक्रमण किया तो उन्होंने राजनीतिक स्थितियों को ले लिया.
They tried to rule by force.
और दबाव में उन्होंने शासन चलाया.
And we know the history, Aurangzeb.
जैसे औरंगजेब की कहानी देखते हैं.
He was such a demon.
वो ऐसा राक्षस था.
He was always trying to exploit the Hindus.
वो हमेशा हिंदुओं को शोषण कर रहे थे.
So one day he decided that he would impose a tax upon the Hindu community.
एक दिन उन्होंने सोचा कि हिंदुओं के ऊपर एक कर लगा देंगे.
If you were a Hindu, you had to pay tax. If you were a Muslim, then no tax.
अगर आप हिंदू हैं तो आपको एक कर देना पड़ेगा. मुसलमान हैं तो नहीं.
Yeah. So the low class Hindus or the Sudras, they couldn't practice their religion because the Brahmins wouldn't let them. So they were thinking, well, the Brahmins are not allowing us to practice our own religion, and the Muslims are forcing us for giving taxes. So let us become Muslims to avoid the tax.
तो जो लोग नीचे के अस्ते जो शूद्र लोग थे और अलोग थे वो देख रहे थे कि ब्राह्मण लोग हमको उनके धर्म को नहीं पालन करने दे रहे हैं और दूसरी तरफ मुसलमान लोग हमको ऐसा भारी कर लगा रहे हैं.
So wholesale, thousands and thousands of Hindus converted to Muslims simply to avoid the tax.
इसलिए बहुत भारी अनुपात में बहुत सारे हिंदू लोग कर से बचने के लिए मुसलमान बन गए.
Prabhupada said these Muslims didn't come from Afghanistan or Turkey, they came from India.
प्रभु जी कहते हैं कि ये मुस्लिम लोग अफगानिस्तान और तुर्की से नहीं आए हैं बल्कि सब भारत के ही.
Because the Brahmins wouldn't allow the lower castes to worship, so they figured we can't worship, but we have to pay tax. So let us become Muslims; we can avoid the tax.
तो मुसलमान लोग ऐसा सोच रहे.
This is the history.
तो मुसलमान लोग ऐसा सोच रहे थे कि ब्राह्मण लोग हमको पालन नहीं करने दे रहे हैं. दूसरी तरफ मुसलमान लोग कर लगा रहे हैं. तो कम से कम कर तो बचाना चाहिए और इसलिए वो मुसलमान बन गए.
When these divisions, these four social orders are followed accordingly, and one practices devotional service, then everyone goes up. The whole society becomes benefit.
तो इस व्यवस्था में अगर कोई एक भी आध्यात्मिकता को अपनाता है तो वो ऊपर जाता है तो पूरा जो समाज है उसको लाभ मिलता है.
So there's four social arrangements, four spiritual arrangements.
तो चार सामाजिक व्यवस्था और चार आध्यात्मिक व्यवस्था है.
Sannyasis, the brahmacharis, brahmacharinis, grihasthas and vanaprastha.
Sannyasi, brahmachari, brahmacharini, vanaprastha or grihastha.
Brahmacharini is the new version of brahmachari. That's it.
Brahmacharini jo hai wo brahmachari ke naye.
From brahmachari came brahmacharini.
Naya shabd hai kyunki wo brahmachari shabd se aaya hai.
That is due to Prabhupada's preaching in the West. When Prabhupada was preaching in the West, he made young ladies students, and they became the new word brahmacharini.
ये प्रभुपाद जी के द्वारा आया है क्योंकि प्रभुपाद जी ने जब पहली बार ऐसा प्रचार चालू किया तो कई तरुणियां आई और प्रभुपाद जी ने ये ब्रह्मचारिणी ऐसा सब नाम लगा.
That's there. That is part of the vanashrams. That is part of the spiritual orders. And then grihasthas, vanaprasthas.
तो ये जो है ये इसको आध्यात्मिक वर्णाश्रम कहते हैं और फिर गृहस्थ हैं वानप्रस्थ हैं.
But when there is cooperation both on the social and spiritual platform, when there is not envy or competition or strife between categories of either spiritual or material, then there is a smooth social and spiritual progress of the society.
तो जब इन अलग अलग विभाजनों में सहयोग होता है और झगड़ा नहीं होता है इत्यादि तो इस तरह से पूरा समाज आध्यात्मिक रूप से उन्नति करता है.
Then society can materially can do so many wonderful things and at the same time reach the goal of life.
इस तरह से समाज जो है भौतिक रूप से कई चमत्कारिक चीजों को कर सकता है और जीवन के लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकता है.
You know, sometimes people ask me, they say, Maharaj, this whole caste system, it's just really unnatural. It's just exploitative. It is just the cause of so many problems. We should do away with the whole system.
तो लोग कभी कभी बोलते हैं महाराज ये जो वर्ण जो जाति प्रथा है ये काफी बुरा है, ये जो है कृत्रिम है और इसको उठा के फेंक देना चाहिए.
When it becomes corrupted, yes, then the system doesn't work, then it becomes exploitative. But when Krishna has created this system, and therefore it should be followed according to His direction.
हाँ जरूर ये इसको फेंक सकते हैं जब ये करप्ट जब ये दूषित हो जाता है. लेकिन हम जानते हैं कि कृष्ण ने ये विभाजन बनाए हैं.
जस्ट लाइक द गवर्नमेंट प्रोड्यूसेस मनी, सो मनी इज द एक्सचेंज करेंसी फॉर कमोडिटीज फॉर सर्विसेज. बट देन अगेन सम अनस्क्रूपुलस पीपल दे क्रिएट काउंटरफिट मनी एंड दैट कॉसेस क्राइम, दैट कॉसेस करप्शन, दैट कॉसेस सो मेनी प्रॉब्लम्स. सो यू कैन ब्लेम मनी फॉर द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स, इट्स द काउंटरफिट और द क्रिमिनल मेंटालिटी.
तो सरकार जो है वो रुपया जारी करती है, तो रुपये से आप अलग अलग चीजों को खरीद सकते हैं, वस्तुओं को खरीद सकते हैं. लेकिन कभी कभी कुछ जाली लोग क्या करते हैं, जाली नोट बनाते हैं और जाली नोट के कारण अलग अलग चीजें होने लगती है. तो इसके मतलब ये नहीं कि हम रुपये या नोट को हम दोष दें, ऐसा नहीं है.
What is that verse? Vanashramacharita purushenam paramparam Vishnu aranti panta nanu toshan nakarana. That this Vanashram system, the four orders, four social orders, four spiritual orders, as mentioned in this verse, and mentioned in this verse from the Vishnu Purana, is the goal is to please the Supreme Personality of Godhead.
तो वर्णाश्रम विभाग की जो बात यहाँ पे भागवतों में की गई है, अन्य जगहों में भी पुराणों में वेदों में की गई है, उसका ये लक्ष्य है कि विष्णु को प्रसन्न कैसे किया जा सके.
समसिडियर हरितोषणम, द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ वन्स एक्सीक्यूशन ऑफ देयर स्पिरिचुअल एंड सोशल ऑर्डर्स इज टू गिव प्लेजर टू कृष्ण.
तो सबसे बड़ी चीज जो हम प्राप्त कर सकते हैं सामाजिक विभाजन के द्वारा, वो कैसे भगवान की उपासना पूजा कर सके, उनको प्रसन्न कर सके.
When Krishna is pleased, then everything becomes auspicious, everything becomes progressive.
अगर कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो सारी चीजें शुभ हो जाती है और सकारात्मक हो जाती है.
To please the Lord. So what you might say, well, what pleases the Lord?
तो भगवान को क्या प्रसन्न करता है?
How to please the Lord?
भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं?
The Lord is pleased by a sincere desire to please Him.
भगवान प्रसन्न होते हैं बस एक सच्ची इच्छा होनी चाहिए कि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहें.
One is sincerely trying to please the Lord according to their social and spiritual position, and offers the results of their activities to the Lord with devotion. Krishna is pleased.
कभी कोई सच्चे मन से अगर भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे और कार्य करने के बाद जो कार्य फल है वो भी भगवान को अर्पित कर दे तो भगवान इसे जरूर प्रसन्न होंगे.
जस्ट लाइक इन द प्रीवियस वर्स, लाइफ्स एक्टिविटीज शुड नेवर बी मोल्डेड फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन.
तो जैसे कि पिछले श्लोक में बताया गया कि जीवन को कभी भी इंद्रिय भोग की तरफ मोड़ना नहीं चाहिए.
सेज दैट, वेयर इज दैट, गो बैक अ लिटिल बिट. लाइफ्स डिजायर्स शुड नेवर बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंस ग्रेटिफिकेशन. One should desire only a healthy life or self-preservation.
जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए. मनुष्य को स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए.
Since the goal of human life is to inquire into the absolute truth, this should be the goal of all of one's activities, to know God and to serve God.
क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा के लिए बना है, इसके अतिरिक्त वृत्तियों का कोई अन्य लक्ष्य नहीं होना चाहिए.
So these divisions are not meant for one category over another. Even within the spiritual divisions, it's not that if I'm a sannyasi and someone else is a brahmachari or brahmacharini, or if I'm a brahmachari, I'm better than the grihasthas. If I'm a grihastha, I'm better than the brahmacharis, because brahmacharis are useless, they don't work, right?
तो ये जो समाज का विभाजन है ये इसलिए नहीं किया कि एक विभाजन दूसरे से श्रेष्ठ है, कि कोई सन्यासी है कोई बस ब्रह्मचारी है या ब्रह्मचारिणी है,
Yeah. Sometimes the grihasthas think, look at these brahmacharis. You know, they become brahmacharis because they can't do anything else.
तो कभी एक गृहस्थ सोचते हैं कि ये ब्रह्मचारियों को देखो ये इसलिए ब्रह्मचारी बने कि वो गृहस्थ
Look at me, I have so much talents, I can do so many things, I can make money, I can organize things.
लेकिन मेरे को देखिए मैं इतनी चीजों को व्यवस्था कर सकता हूँ इतने सारे आयोजन कर सकता हूँ अलग अलग कार्यों को संपादन कर सकता हूँ
Brahmacharis, they just sleep on the floor, eat khichdi, and they just jump up and down.
ये ब्रह्मचारी बस सोते हैं और उठने के बाद थोड़ा नाचते वाचते
So we have to understand that, you know, we have to be productive in life.
तो तू समझना चाहिए कि जीवन में उत्पादनशील होना चाहिए व्यक्ति.
Life is meant to produce things.
Like जीवन में कुछ करना चाहिए.
Like children.
जैसे कि बच्चे.
So and the brahmacharis they think, look at these grihasthas, they're just sense gratifiers. That's all.
और ब्रह्मचारी सोचते हैं कि ये गृहस्थों को देखो केवल इंद्रिय भोग में डूबे हुए
they don't even know how to spell the word austerity. See, they don't know how to spell the word austerity.
उनको ये भी पता नहीं कि त्याग शब्द को उच्चारण कैसे करें.
Therefore, they have to take up this life of grihastha.
इसलिए उन्होंने ये गृहस्थ जीवन स्वीकार कर लिया.
So this kind of back and forth, criticizing one's another person's position or seeing one's position as better than another, this also creates disharmony, disruption, and never pleases the Supreme Lord.
तो इस तरह के सोच होने से जो जो तारतम्यता है वो टूट जाती है और भगवान को प्रसन्न नहीं करती है.
One should practice spiritual life according to how best they can make advancement.
तो आध्यात्मिक जीवन को अपने जीवन में इस तरह से अपनाना चाहिए कि व्यक्ति मैं कैसे अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कर सकता हूँ.
It's not your ashram that is better, but your devotion and your purification of the heart that Krishna sees, not so much what color clothes you wear.
ये आश्रम इतना महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि आपका जो भक्ति है जो भगवान को प्रसन्न कर रहा है न कि किस रंग के कपड़े आपने पहन रखे.
Some of the greatest devotees are grihasthas.
कुछ बहुत बड़े भक्त गृहस्थ हुए हैं.
We have our history.
इतिहास में
रामानंद रॉय, सार्वभौम भट्टाचार्य,
रामानंद रॉय और सार्वभौम भट्टाचार्य,
पुंडरिक विद्यानिधि, Srivas Thakur, they were all first class grihasthas.
ये सब प्रथम श्रेणी के गृहस्थ भक्त थे.
And very intimate associates of Lord Chaitanya Mahaprabhu.
और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद थे.
So the ashrams are simply meant as a way to practice devotional service progressively. And so.
तो आश्रम बस इसलिए बनाया गया है कि कैसे भक्ति को धीरे धीरे उन्नति की ओर ले जाया जा सके.
One ashram is not better than the other.
एक आश्रम दूसरे से श्रेष्ठ है ऐसा नहीं.
Just like one social order is not better than another.
जैसा कि एक सामाजिक स्तर दूसरे से श्रेष्ठ है ऐसा नहीं.
So one executes their duty according to vana and ashram, but what is the goal of that execution is to please Krishna.
तो व्यक्ति वर्ण और आश्रम के अनुसार से कार्य करता है लेकिन सबसे इसमें लक्ष्य या आखिरी बिंदु यह है कि कैसे भगवान कृष्ण को प्रसन्न करें.
And pleasing Krishna means acting in such a way that religious principles are what we say propagated. Acting in such a way that religious principles are proliferated or propagated.
तो इस तरह से कार्य करना कि भक्ति के सिद्धांतों का प्रतिपादन हो सके बढ़ावा मिल सके.
In other words, one has to act on behalf of the Lord, one has to act on behalf of others.
नहीं तो अगर हम भगवान के लिए कार्य नहीं करते हैं तो हमको दूसरों के लिए कार्य करना पड़ता है.
Nothing should be done for one's own selfish interest.
व्यक्ति को खुद के लाभ के लिए कोई भी कार्य करना नहीं चाहिए.
It's like when we chant Hare Krishna.
जैसे कि हम हरे कृष्ण जप करते हैं.
ऑफ कोर्स वी आर बिकमिंग प्योरिफाइड, ऑफ कोर्स वी आर बिकमिंग हैप्पी, बट रियली ऑन अ हायर लेवल चैंटिंग हरे कृष्ण इज टू प्लीज कृष्ण.
हालांकि जप करने से हम शुद्ध होते हैं, सुखी होते हैं, लेकिन एक ऊंचे स्तर पे ये देखा जाता है कि इस जप की क्रिया से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं.
When the devotees sincerely come together to glorify the Lord is pleased.
जब भक्त लोग आके सच्चे रूप से भगवान को गुणगान करते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं.
And if you're chanting Hare Krishna and you're not pleasing the Lord, even though you're chanting Hare Krishna, you will get very little from that chanting.
अगर आप हरे कृष्ण का जब से भगवान को प्रसन्न नहीं करते हैं तो इससे बहुत ही कम चीज आपको मिलेगी.
सो द होल गोल ऑफ एवरीथिंग, श्रील प्रभुपाद इन राइटिंग दिस पर्पोर्ट ही हैज इटैलिसाइज्ड दिस स्टेटमेंट, द एम मस्ट बी टू प्लीज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, इट्स इन इटैलिसिस.
तो जब प्रभुपाद जी ये तात्पर्य लिख रहे हैं तो उन्होंने इस शब्द के ऊपर उन्होंने उस सबको मोड़ के लिखा है, अलग तरीके से लिखा है, झुका के, कि जो लक्ष्य है इसका वो भगवान को प्रसन्न करना है.
सो वी हैव टू सर्व विद द डिजायर टू प्लीज.
तो हम सेवा करते हैं इस इच्छा से कि भगवान को प्रसन्न हो.
व्हाट इज दैट वर्स? अभ्याभिलाषित शून्य ज्ञान कमार नावितम अनुकूलेन कृष्ण सीलनम भक्ति उत्तम. दैट प्योर डिवोशनल सर्विस must be freed from fruit of activities, gain through fruit of activities, gain through mental and philosophical speculation. Pure devotional service must be to serve Krishna with a desire to please Krishna.
तो रूप गोस्वामी इस श्लोक में बोलते हैं कि ये जो हम कार्य करते हैं वो भौतिक फलों से विमुख होना चाहिए, मानसिक जो परिकल्पनाएं हैं उनसे भी विमुख होना चाहिए और सेवा भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से किया हुआ होना चाहिए.
सो वन हैज टू नॉट ओनली प्लीज कृष्ण बट वन हैज टू हैव अ डिजायर टू प्लीज कृष्ण.
भगवान को केवल प्रसन्न नहीं करना है बल्कि एक ऐसी इच्छा रखना है जिससे कि भगवान प्रसन्न हो.
बिकॉज वी ऑल्सो हियर दैट द डीमंस दे ऑल्सो प्लीज कृष्ण.
क्योंकि हम सुनते हैं कि राक्षस लोग भी भगवान को प्रसन्न कर चुके थे.
Yes. When Krishna wanted to fight, he doesn't fight with his devotees. So we know the story. Jai and Vijay became demons in the material world, so Krishna could fight.
तो हम देखते हैं कि भगवान की लीला में भगवान जब लड़ाई करना चाहते हैं तो भक्तों से तो लड़ाई नहीं करते हैं, तो इसलिए जय और विजय को वो राक्षस बना के आते हैं जिससे कि उनसे वो लड़ाई कर सके.
Now that's not devotional service because it is not what a desire to please. The demons don't fight with Krishna to please Krishna, they fight with Krishna either to try to kill Krishna or cause havoc.
तो ये जो है भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहा है, ये जो राक्षस लोग जो करते हैं वो उनके अंदर ये इच्छा नहीं है कि भगवान प्रसन्न हो. भगवान प्रसन्न होते हैं लेकिन उनके अंदर ये इच्छा का अभाव होता है.
But because Krishna likes to fight and he can't fight with his devotees because Krishna always wins.
तो भगवान जब लड़ाई करना चाहते हैं भक्तों से तो नहीं कर सकते.
सो ही कम्स टू द मटेरियल वर्ल्ड टू फाइट.
इसलिए भौतिक जगत में आते हैं लड़ाई करने के लिए.
प्रभुपाद सेड वेयर डू यू गेट दैट प्रोपेंसिटी टू फाइट फ्रॉम कृष्णा.
प्रभुपाद जी कहते हैं लड़ने की इच्छा कहां से आती है? कृष्णा से आती है.
कृष्णा लाइक्स टू प्रभुपाद सेड कृष्णा लाइक्स टू फ्लेक्स हिज मसल्स.
प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान अपने भुजाओं को मोड़ना चाहते हैं इसलिए.
Course he's not like these big signboards with all these guys with big giant muscles. It's not like that.
हालांकि कृष्ण ऐसा नहीं चाहते जैसे कि बड़े-बड़े एडवर्टाइजमेंट बोर्ड पे दिखते हैं कि वो मसल्स दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं.
He doesn't work out with bell bars and he doesn't go to the gym.
वो कुछ भार उठा के जिम खाने में जाके ऐसा कुछ मसल बनाते हैं, ऐसा नहीं.
Krishna is naturally powerful. And so he likes to, you know, exercise that power sometimes.
कृष्णा स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली है, उनको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं.
सो ही फाइट्स विद डीमंस एंड द डीमंस प्लीज कृष्णा बाय फाइटिंग विद हिम एंड देन ही किल्स देम, दे गेट लिबरेशन एंड कृष्णा इज हैप्पी.
तो भगवान इन लोगों राक्षसों को इनसे लड़ाई करते हैं, भगवान इनको मार देते हैं, वो उनको मोक्ष मिल जाता है और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं.
एंड द डीमंस आई मीन द डिवोटीज आर आल्सो हैप्पी.
और भक्त लोग भी खुश हो जाते हैं.
नाउ समटाइम्स द डीमंस प्लीज कृष्णा by harassing the devotees.
और कभी कभी राक्षस लोग भगवान को प्रसन्न करते हैं भक्तों को तकलीफ देके।
How can the demons please Krishna by harassing the devotees?
ऐसा कैसे हो सकता है कि भक्तों को तकलीफ देके भगवान को प्रसन्नता मिले?
Because the devotees when they're harassed, they take shelter of Krishna.
क्योंकि जब भक्तों को तकलीफ होती है तो भक्त लोग भगवान का शरण लेते हैं।
And this pleases Krishna.
और ये भगवान को प्रसन्न करता है।
So indirectly, the demons are pleasing Krishna by forcing the devotees to become more Krishna conscious.
तो इसलिए राक्षस लोग भक्तों को शरणागति दिला के भगवान को प्रसन्न करते हैं।
So, but that is not bhakti.
लेकिन ये भक्ति नहीं।
Because the demons don't try to please Krishna, they don't try to please the devotees.
क्योंकि वो भक्तों को और भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा नहीं रखते।
So, but bhakti means to please Krishna with a desire to please Krishna. The intention must be there in the activity. That is bhakti.
तो भक्ति का मतलब है कि भगवान को कृष्ण को प्रसन्न करना और ऐसी इच्छा रखना जिससे कृष्ण प्रसन्न हो।
Then it is devotional service.
तब ये भक्ति होती है।
So here this verse is very instructive. It says that one should offer all of one's activities, one's abilities, according to vana and ashram, for the pleasure of the Lord.
यहाँ पे बताया गया कि व्यक्ति को सारे कार्य कुशलताओं को क्षमताओं को फलों को भगवान के प्रसन्नता के लिए समर्पण करना चाहिए।
Whether you go to school as a student, or whether you're a housewife, or whether you are just a common laborer, all these activities should be directed as a service to the Lord, a pleasure for pleasing the Lord.
चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप गृहपत्नी हो, चाहे आप श्रमिक हो, लेकिन आपके सारे कार्य भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए।
कृष्ण says in Gita, याद करोसी यरनासी याद जहोसी ददासी याद तपसी तुकुंतया तत्कुरुषो मरार्पणम। All that you do, all that you eat, all that you offer and give away, as well as all austerities you may perform, should be done as an offering to me.
भगवान कहते हैं कि आप जो भी करते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, जो भी आपके फल हैं, सब मेरे को आप अर्पण करिए।
हाँ, this is the focus of all sectors of society to do everything as a service to the Lord.
तो यही लक्ष्य केंद्र बिंदु होना चाहिए पूरे समाज का कि भगवान को कैसे प्रसन्न करना है।
One need not create like two lifestyles. Well, there's something for me, something for Krishna.
व्यक्ति को दो जीवन शैली नहीं अपनानी चाहिए कि एक कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए और थोड़ा मेरे लिए।
I have my spiritual activities, I have my material activities.
ये मेरा आध्यात्मिक जीवन है, ये मेरा भौतिक जीवन है।
Spiritualize your material activities and then your life becomes spiritual.
आप अपने भौतिक क्रियाओं को आध्यात्मिक करिए जिससे कि जीवन आध्यात्मिक हो जाएगा।
Because all activities are ultimately meant for spiritual progress.
क्योंकि सारे क्रियाएं इसलिए हैं कि आप आध्यात्मिक रूप से उन्नति कर सकें।
Material simply means that one is cut off from the source.
तो भौतिक का मतलब जो उसका जो स्रोत है उससे वो कटा हुआ है।
Just like one may be speaking political propaganda.
जैसे कि कोई राजनीतिक भाषण भी दे सकते हैं।
To try to push forward some program.
और उनके आयोजन को बढ़ावा देने के लिए कर सकते हैं।
And someone else may be speaking the glories of the Lord.
और कोई दूसरा है भगवान की महिमा का गुणगान कर रहा है।
So both are using microphone.
दोनों ही माइक का यूज कर रहे हैं।
So is that microphone material or spiritual?
तो माइक भौतिक है या आध्यात्मिक?
The microphone is according to the speaker. When it's being used to propagate material things, it's material. When it's being used to propagate the glories of the Lord, that microphone is actually spiritual.
तो माइक का इस्तेमाल जब भौतिक क्रियाओं को प्रतिपादन के लिए होता है वो भौतिक हो जाता है, जब आध्यात्मिक के लिए होता है तो आध्यात्मिक हो जाता है।
So what is spiritual, what is material means whatever is used in the service of the Lord, that is spiritual. So that may be anything that we do, except sinful activities, of course.
तो क्या भौतिक है, क्या आध्यात्मिक है? कोई भी चीज जो भगवान के लिए इस्तेमाल किया गया है वो आध्यात्मिक है, बाकी सब भौतिक है, जब तक कि हम कोई पाप में कृत्य में न लगे।
So this is the platform of success, this is the platform of what we say happiness.
तो यही रूपरेखा है सफलता की और सुख की।
And when society works in a cooperative way to please the Lord, to serve the Lord, then that society actually becomes glorious and progressive. Then all calamities, you know, all inauspiciousness, all what we say, unfortunate situations disappear. The society actually grows both materially and spiritually.
तो जब समाज भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है तो उन्नति की ओर अग्रसर होता है, सारे अमंगल दूर हो जाते हैं और सब कुशल मंगल हो जाता है.
You study the Vedas. When Krishna was here 5,000 years ago, the whole world was actually under the vanashram system. The whole world was practicing Krishna consciousness.
तो अगर आप वैदिक समय में देखेंगे, भगवान कृष्ण के समय में, तो सारे लोग वर्णाश्रम जीवन को अपनाए हुए थे और पालन कर रहे थे.
And if you study the history at that time, if you can find some books, you'll find that there was no lack in any area. Everything was developed to the highest: science, education, military, medicine. The best of all sciences materially are coming from India.
तो अगर आप इतिहास के पन्नों को उलट के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय कुछ भी चीज की कमी नहीं थी.
India is not only the source of spirituality, it's also the source of material sciences.
उस समय भौतिक विज्ञान भी काफी उन्नत था, जैसे कि साइंस था और मिलिट्री का जो विज्ञान है, वो ये सारी चीजें बहुत ही उन्नत थी उस समय.
Who invented the telephone?
टेलीफोन का आविष्कार किसने किया?
They give this credit to Alexander Bell, right?
वो अलेक्जेंडर बेल करके वैज्ञानिक उनको देते हैं.
But it wasn't Alexander Bell that discovered, it was Chandra Bose. He was the first one to discover the telephone.
ये वो नहीं बल्कि जो बोस जी थे उन्होंने इसका आविष्कार किया था.
Yeah, but Alexander Bell stole the knowledge from Chandra Bose and published it. And he got the credit.
और अलेक्जेंडर बेल महोदय ने बोस से चुरा के उसको पब्लिश करके उसका नाम ले लिया.
Yeah. What is the greatest of all medicine? Ayurveda. It's coming from India.
सबसे बड़ी दवाई कौन सी? आयुर्वेदा है और वो भारत से आई.
It's the perfect science of medicine. Now we have allopathic and dispathic and thatpathic and there's so many pathics.
तो ये सबसे बड़ी विज्ञान है. आज देखते कि एलोपैथी, ये पैथी, वो पैथी आ गई बहुत सारी.
But Ayurveda is Ayurveda. It's coming from Vedas. It's perfect science of medicine.
लेकिन आयुर्वेद जो है वो आयुर्वेद, ये वेद से आया है और ये पूरा परफेक्ट है.
How Hitler, how was he so successful in conquering over the world when he was moving his German troops around the world?
हिटलर इतने सफल क्यों हुए अपने अपने अभियान में पूरे विश्व में?
He studied Dhanurveda.
उन्होंने आयुर्वेद पढ़ा.
Yeah, he carefully studied the Dhanurveda and used the Dhanurveda as his pattern for conquering the world.
उन्होंने धनुर्वेद का अध्ययन किया और उससे पता लगाया कि दुनिया को कैसे जीत पाएंगे.
So the best of all material sciences are coming from the Vedas also.
तो भौतिक विज्ञान के चरम पराकाष्ठा जो है वेदों से आई है.
But now most of that is lost because India has become, they've lost the foundation, and that is the spiritual fabric.
तो इसमें से ज्यादातर चीजें लुप्त हो गई हैं क्योंकि भारत का जो आध्यात्मिक आधारशिला है वही नष्ट हो गया.
Now they're chasing after the West.
और हम अभी पश्चात जगत के तरफ पीछे दौड़ रहे हैं.
To have cars and computers and so many nice things, right?
कार, कंप्यूटर, अन्य कई सुंदर सी चीजें.
That's all right. You can have good computers and nice cars and so many nice things, but the point is that it should please the Supreme Personality of Godhead.
ये ठीक है कि हमारे पास कार, कंप्यूटर इत्यादि चीजें होनी चाहिए, लेकिन ये सब कृष्ण को प्रसन्न करना चाहिए.
Everything should be done as a service to the Lord.
हर एक चीज भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए.
If you're producing so many cars and computers, but people are getting radiation cancer and smog pollution, then that's not pleasing the Lord.
अगर आप कार या अन्य चीजों का आविष्कार कर रहे हैं और लोगों को जो रेडियो धर्मी धूलों से जो कैंसर हो रहा है तो भगवान को जरूरी प्रसन्न नहीं करेगा.
If you're developing your society, but you're kicking the farmers out and pushing everybody into the cities to become workers in factories, that's not pleasing the Lord.
आप ऐसा समाज का निर्माण कर रहे जिससे कि कृषि के जो कृषक किसान लोग हैं वो वहां छोड़ के इधर शहर में आके रह रहे और फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, ये भगवान को पसंद नहीं करेगा।
सो दिस सोशल डिविजन मस्ट बी कंपनीड बाय स्पिरिचुअल डायरेक्शन एंड स्पिरिचुअल डायरेक्शन कंबाइंड विद मटेरियल एक्सपर्टीज सोसाइटी फ्लरिशेस ऑन बोथ लेवल्स। दैट वाज ट्रू व्हेन कृष्णा वाज हियर।
समाज
ट्रू वैदिक कल्चर वाज परफेक्ट इन बोथ स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियल प्रोग्रेस।
तो समाज का विभाजन जो है वो आध्यात्मिक दिशा के साथ होना चाहिए, तभी जाके ये सफलता की ओर अग्रसर होता है।
Years ago there was so much gold. Ladies would have all these nice gold bangles. Right now what do they have? Plastic.
पहले इतना सोना था कि स्त्रियों के पास सोने के चूड़ियां होती थी, आजकल प्लास्टिक के होते हैं।
Before it was gold, right? Gold earrings, gold bangles, gold, what is it called? Anklets, yeah, gold.
पहले कानों में, पैरों में, हर जगह सोने के आभूषण पहनते थे।
When Yudhisthira Maharaj wanted to perform the Rajasuya sacrifice, he needed a lot of gold, so he sent Arjuna to go to the dustbins to collect the plates that people used to eat on. They used to eat on gold plates and throw them away.
तो जब युधिष्ठिर महाराज को राजसूय यज्ञ करना था तो उन्होंने अर्जुन को भेजा कि जो डस्टबिन में जो प्लेट्स फेंके हैं लोगों ने, सोने के प्लेट्स जो एक बार यूज करके फेंकते थे लोग, उसको जमा करने गए थे।
गोल्ड वाज बिकॉज द अर्थ वाज प्रोड्यूसिंग, द अर्थ इज मदर, अर्थ इज कृष्णस सर्वेंट एंड द अर्थ गिव्स मटेरियल वेल्थ व्हेन स्पिरिचुअलिटी इज बीइंग प्रैक्टिस्ड।
तो धरती माँ जो है वो सारे गहनों को, आभूषणों को, सोना इत्यादि को देती है जब लोग आध्यात्मिकता को ठीक से अपने जीवन में अनुशीलन करते हैं।
Scarcity comes in when there is an imbalance of the social system and exploitation by unscrupulous leaders.
कमियां आती हैं जब जो नेता लोग हैं वो शोषण के आधार पर जीवन जीने लगते हैं।
It's like when, what is it? When Prithu Maharaj became king, Prithu Maharaj was an incarnation of the Supreme Personality of Godhead to rule the world.
जब प्रिथु महाराज राजा थे तो वो भगवान के ही अंश थे और वो राज्य करने के लिए आए थे।
And before him, the king was King Vena. King Vena was a big demon. And because of him, dacoits were ruling everywhere and the earth was withholding her natural resources. Because people were impious.
उनके पहले राजा वेन थे और वो काफी अमंगलकारी थे, इसलिए धरती माँ ने जो सारी चीजें थी वो देना बंद कर दिया था।
So, Maharaj Prithu established pious rule, saintly rule, and then he performed so many sacrifices. Mother Earth was pleased, and she started to give so many wonderful resources. The whole society became full of plenty, like grains, gold, flour, so many valuable things, jewels. All these things came when Prithu Maharaj became king.
तो जब प्रिथु महाराज राजा बने तो उन्होंने यज्ञों का आयोजन किया और इस तरह से धरती माँ को काफी प्रसन्न किया। बाद में धरती माँ ने वो आभूषण, फूल और अन्य इत्यादि जो अन्य अन्य चीजें थी सबका बहुत ही प्रचुर मात्रा में पूर्ति करना चालू किया।
So my point is that we need not make separate material arrangements for success in society. Simply execute your activities to please the Lord. When the Lord is pleased, Mother Earth provides everything and more.
तो कहने का मतलब यह है कि हमें बहुत ही कठिन परिश्रम भौतिक जीवन में करने की आवश्यकता नहीं है। केवल हमको इस दिशा में प्रयास करना है कि हम आध्यात्मिकता को अपनाएं, भगवान को प्रसन्न करें। जब भगवान प्रसन्न होंगे तो माता जो धरती माँ है वो अपने आप ही सारी चीजों को पूर्ति कर देती है।
One who is serving the Lord, there's never any lack, there's never any scarcity.
जो व्यक्ति भगवान की सेवा करता है वो कभी भी किसी कमी में नहीं जीता।
Because when Krishna is pleased, everything becomes auspicious.
क्योंकि जब कृष्ण प्रसन्न होते हैं सारी चीजें मंगलकारी हो जाती
है। So that's what this verse is all about. Whoever you are, whatever your material position is, whatever your spiritual position, execute your duties, your service as an offering to Krishna in order to please Krishna.
ये श्लोक में यही बताया गया है कि आप चाहे किधर भी कार्य करें, किसी भी विभाजन में हो, आप ऐसे कार्य करें जिससे कि भगवान प्रसन्न हो, भगवान की सेवा हो।
ओ बेस्ट अमंग द ट्वाइस बोर्न, सो दिस इज सुत गोस्वामी, ही स्पीकिंग, नो आई एम सॉरी, द सेजेस आर सेइंग टू सुत गोस्वामी, आर कॉलिंग हिम ओ बेस्ट अमंग द ट्वाइस बोर्न, ही इज द son of Romaharshan Suta, he's been elected as the leader of all the sages.
तो यहाँ साधु लोग जो हैं वो सुत गोस्वामी को बोल रहे हैं, अतः हे द्विज श्रेष्ठ, क्योंकि वो रोमहर्षण के पुत्र हैं।
He asked the question, what is the goal of life?
तो उन्होंने प्रश्न पूछा था कि जीवन का लक्ष्य क्या है?
The answer is the best among the twice born. It is therefore concluded. The sages have got together and came up with a good conclusion. Now there's 88,000 sages. All the sages in the universe came for this meeting at Nami Sharanya. The highest and most qualified sages came. They came together to discuss how to propagate religious principles in Kali Yuga.
तो यहाँ हम देखते हैं कि 88,000 साधु लोग जो पूरे ब्रह्मांड से एक साथ आके यहाँ जमा हुए हैं, उन लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला है अंतिम में।
That's why they're meeting, because we're entering into Kali Yuga. This is 5,000 years ago. This meeting was, and now they're concerned. Krishna's gone. How to establish?
तो ये पूरा मीटिंग जो है उनका इसलिए हुआ है कि अभी कलयुग में धर्म का प्रतिपादन परिचालन कैसे होगा?
Therefore concluded that the highest perfection one can achieve by discharging their duties prescribed for their occupation and caste divisions is in orders of life is to please the personality of Godhead.
तो ये निष्कर्ष निकला कि परम लक्ष्य या परम सिद्धि तब प्राप्त हो सकती है जब अपने सारे कार्यों से, समाज के सारे विभाजनों से हम भगवान को प्रसन्न कर पाए।
Our goal is to make Krishna smile.
और हमारा लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण के चेहरे पे एक हंसी खुशी दिखाना।
ओके, एनी क्वेश्चंस कमेंट्स?
क्या कोई प्रश्न है?
वी हैव माइक्रोफोन समवेयर, आई थिंक देयर इज अ माइक्रोफोन बैक देयर समवेयर। यस,
हरे कृष्णा। मैं सोचने का मेरा एक ढंग था ऐसा कि जब मैं आध्यात्मिक का परिचय ले रहा हूं और बहुत अच्छी चीज लगती है आध्यात्मिक के बारे में, और जब बाहर की दुनिया में मैं देखता हूं कि आध्यात्मिक विरुद्ध से जो कार्य चलता है तो बहुत दुख होता है। तो हरे कृष्णा जो अपना इस्कॉन का जो कार्य है करता है तो मुझे बहुत अभिमान होता है, मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि इस्कॉन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस्कॉन गवर्नमेंट में ज्वाइन क्यों नहीं होते तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
क्वेश्चन इज प्लीजिंग ऑल द डिवोटीज।
क्वेश्चन इज Yeah, when we see outside, it is so disgusting. When we come here, we feel so much. When we come here in ISKCON, we feel so much pride of association of devotees. So why not ISKCON joins government to bring good? Why not ISKCON joins government?
Well, we tell them what to do, but they don't listen.
हम उनको बोलते हैं कि आपको ये करना चाहिए, लेकिन वो सुनते नहीं।
We don't join, it is not our business to join any organization. Our business is to give transcendental knowledge.
हमारा कार्य ये नहीं है कि किसी के साथ मिल जाए, लेकिन हमारा कार्य है कि हम दिव्य ज्ञान को बांटे।
That is our service to the world, to give transcendental knowledge.
दुनिया को आध्यात्मिक ज्ञान देना ही हमारी सेवा है।
And so we don't discriminate who that knowledge we give to. We give it to everyone, including the government.
तो हम ये देखते नहीं कि हम किसको देना है, हम गवर्नमेंट को भी दे सकते हैं ज्ञान, देते हैं उनको।
And if they take it up, then that is fine. But if they reject it, we cannot. What can we do?
अगर वो ले लें तो अच्छा है, लेकिन अगर वो दुत्कार दें तो हम क्या कर सकेंगे?
And back in the early days of the Hare Krishna movement in America, Prabhupada began preaching by having devotees run for presidential candidate in America.
तो जब शुरुआत के दिनों में प्रचार चलता था अमेरिका में, प्रभुपाद जी बोलते थे कि कैसे भक्तों को जाके जो राष्ट्रपति कैनेडी हैं उनको मिलकर उनको समझाना चाहिए.
We started our own party. It was called In God We Trust Party.
और सोच रहे थे कैसे एक पार्टी बनाएंगे जिसका नाम होगा कि भगवान में हमें श्रद्धा है.
And we ran candidates for government for presidential offers.
और बाद में वो राष्ट्रपति के भवन में गए.
But then Prabhupada dropped the whole thing. He said it was just too much botheration. Our business is not politics. Our business is preaching God consciousness.
तो बाद में प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, इतना करना ठीक नहीं. हमारा जो लक्ष्य है वो व्यवसाय करना नहीं है राजनीतिकों के साथ, बल्कि हमारा है कि ये प्रचार करना आध्यात्मिक ज्ञान का.
We don't want to sacrifice our mission in order to become politicians.
हम अपने मिशन का बलिदान करके राजनीतिकों से मिलना नहीं चाहते हैं.
Now we invite them to come. When we inaugurate temples, we always invite political leaders to come, take part in the inauguration, give their blessings, their approvals, like that.
तो हम उनको यहाँ पे निमंत्रित करते हैं कि आप आइए, आप हमारे यहाँ सहभागी होइए. लेकिन अगर वो नहीं आएंगे, उनका उनकी कृपा अभिलाषा भी रखते हैं, लेकिन इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते.
And many times political leaders have helped the Hare Krishna movement many times.
और कई बार उन लोगों ने, नेताओं ने इस्कॉन संस्था की मदद की है.
Especially in India.
भारत में विशेष करके.
But not so much in other Western countries because they don't appreciate our movement.
लेकिन पाश्चात्य जगत में इतना नहीं है क्योंकि वो हमारा इतना सराहना नहीं करते.
But in any case, our program is to spread transcendental knowledge to every sector of the society, and whoever takes it up, then they can become benefited.
चाहे कोई भी हो, हमारा कार्य है कि बिना किसी को भेदभाव किए हुए सबको आध्यात्मिक ज्ञान को देना.
Yes, question.
हरे कृष्णा महाराज.
हरि बोल. It's too early for हरि बोल. हरे कृष्णा.
क्वेश्चन है. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण.
It's too early for Nam Rock. We're not.
Hare
Krishna.
Hare
Krishna.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hare Krishna. It works. All you have to do is talk into it.
Hare Krishna.
Don't try to beat it up. Just talk to it. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hare Krishna. Hare Krishna. Ah. Everyone who was allowed to. I don't know the story so well, but during Ramchandra's rule, it is called Ram Raj. Ram Raj was the perfect rule. Everyone should perform their service accordingly. There was activities for all sectors of society, both material and spiritual. But everything was done in relationship to the ruling direction. So you have to really, I would have to really read this story and get an understanding of what happened, because I cannot honestly answer your question because I don't know the incident, nor do I know what happened, nor do I know how society was run at that time. If someone wants to answer that question, they can. Any of the brahmacharis or anyone else, they know the answer to that question. The question was, and some person's son died before the father died, so that person came to Ram and complained, and Ram discovered it was some sudra was doing something wrong.
So, prashna hai ki,
what did Ram do? What kind of action did Ramachandra do? What did he do? I don't. He pronounced the death sentence on a sudra. What was the sudra doing? He was performing tapasya. He wasn't supposed to be. He was outside of his vanashram system. He wasn't. Sudras are not supposed to perform tapasya. They're supposed to assist the higher classes in there. You see, nowadays, what is our principle? We're not trying to align society in the four ashrams. We're not trying to, you can repeat what I say. We're not trying to create vanashram, we're not trying to create varna.
Hum samaj mein varno ko phir se sthapit karne ke liye nahi.
Right now we are teaching daivi vanashram.
Hum yahan pe daivi vanashram vyavastha sikha rahe.
Daivi vanashram means to spiritualize all of one's activities.
Daivi vanashram ka matlab hai apne sari kriyaon ko adhyatmik banana.
Just like in society now, leaders of the government, they're not kshatriyas.
Jaise ki aaj ka samaj hai jo sanstha hai wo kshatriyon ke dwara nahi chalai ja rahi hai.
The leaders of the government they're more like vices, they're businessmen.
आध्यात्मिक नेता हैं वो व्यवसायी लोग हैं और वैश्या हैं.
So when you have a government led by businessmen, what kind of government you're going to have?
तो ऐसी सामाजिक ऐसे नेता लोग हैं.
It's all based on profit, not on spiritual knowledge and protection.
ये पूरा जो है लाभ हानि लाभ के ऊपर है और आध्यात्मिक उन्नति की तरफ नहीं है.
So to try to reorder society or reorganize society according to varna is not our program, nor is it possible. Society is too upside down. What we're trying to do is re-spiritualize society, so whatever occupation a person may have, if they become a devotee, then they develop the proper qualities and the proper, what we say, activities which will be beneficial for everyone.
तो समाज के चार वर्गों का जो विभाजन है उसको हम वापस पुनर्स्थापित करना नहीं चाहते हैं क्योंकि समाज इतना उल्टा पुल्टा हो गया है कि ये करना भी संभव नहीं है लेकिन हम चाहते हैं कि देवी वर्णाश्रम जो है वो ऐसा करें.
Anyway, the scriptures say kalau sudra sambhavan. In Kali Yuga, everyone's born a sudra.
कलयुग में शास्त्र बताते हैं कि सारे लोग जन्म से शूद्र होते हैं.
Why? There's no samskaras.
क्योंकि संस्कार नहीं किए गए.
Nobody follows the samskaras anymore. Garbhadan samskar, all the different samskaras. These are progression for a higher progress in life.
आजकल कोई भी संस्कार नहीं करते हैं. गर्भधान संस्कार इत्यादि.
Nowadays, samskar, the baby's born, they dip it into some water, they wash it with some antiseptic and samskara.
आज का संस्कार है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको एक दवाई के सॉल्यूशन में डुबा के निकाल देते हैं. वही संस्कार है आज.
If you see this, you know, society is all sudras now. Everyone's born sudra.
तो आज के समाज में सारे लोग जन्म से शूद्र हैं.
So everyone needs training.
इसलिए सभी को प्रशिक्षण की आवश्यकता है.
So that training has to be both material and spiritual. But without the spiritual, the training simply is just producing more exploitation, that's all.
तो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रशिक्षण होना चाहिए लेकिन आध्यात्मिक प्रशिक्षण की जगह आज केवल शोषण चल रहा है.
So when people come to our society, we don't say, are you a Brahmin? Are you a Kshatriya? Are you a Sudra? Are you a Vaishya? No, we just take people according they come, we teach them to become Krishna conscious, that's all.
तो हम जब कोई लोग हमारे पास आते हैं तो हम ये नहीं पूछते क्या ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं इत्यादि. लेकिन हम उनको सीधा ही आध्यात्मिक प्रशिक्षण देने को तैयार होते हैं.
एंड लेट देम परफॉर्म देयर ऑक्यूपेशन व्हाटएवर इट मे बी बट इफ देयर डिवोटीज देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन.
तो आपकी जो भी आपका जो भी धंधा है वो आप करिए लेकिन आप इसको आध्यात्मिक होकर.
इट्स नॉट पॉसिबल टू रीऑर्गेनाइज सोसाइटी अकॉर्डिंग टू वर्णा. सिंपली वी आर वर्किंग ऑन आश्रम दैट्स ऑल स्पिरिचुअलाइज सोसाइटी.
तो इसको वापस वर्णाश्रम में विवाह करना मुश्किल है. हम क्या चाह रहे हैं कि उनको आध्यात्मिक बना दें उनके ही कार्य को.
And this is called Daivi Vanashram, spiritual Vanashram.
और इसको देवी वर्णाश्रम या आध्यात्मिक वर्णाश्रम.
This is Prabhupada's program for re-spiritualizing the world.
और ये प्रभुपाद का आयोजन है दुनिया को आध्यात्मिकता की ओर बढ़ाने के लिए. महाराज here is a question. How do I practically be sure or confident that by this particular act of mine, Krishna is pleased? मैं कैसे ये पक्का मान सकता हूं और विश्वास के साथ जान सकता हूं कि कृष्ण भगवान मेरे से प्रसन्न हुए.
Well, we usually say that we ask the spiritual master or we ask our authorities, are you pleased? If they say yes, then Krishna is pleased.
तो हम अपने गुरु महाराज के पास पूछ सकते हैं अपने जो अथॉरिटी हैं जो उनको पूछ सकते हैं अगर वो प्रसन्न है तो हम समझ सकते हैं भगवान प्रसन्न हुए.
We try to please Krishna by pleasing his representatives.
हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं भगवान के प्रतिनिधियों को प्रसन्न करके.
Now if you're not working under anyone, then you should.
अगर आप किसी के नीचे कार्य नहीं कर रहे तो आपको किसी के नीचे तो कार्य करना चाहिए.
Otherwise, how will you know how to please Krishna? Everyone needs some, what we say, guidance, direction. Everyone needs guidance and direction.
नहीं तो कैसे पता चलेगा कि मैं आगे कृष्ण को प्रसन्न कर रहा हूँ क्योंकि हर व्यक्ति को निर्देशन की आवश्यकता होती है.
So our society is not, I'm there and Krishna is here. And that's it. I just please Krishna. No, Krishna is not so easy to reach. You have to please Krishna by pleasing his representatives.
तो ऐसा नहीं कि एक तो हम यहाँ पे हमारा समाज यहाँ है कृष्ण कहीं है और मैं भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ ऐसा नहीं. भगवान को प्रसन्न करना है तो उनके प्रतिनिधियों को ही प्रसन्न करना पड़ेगा.
This is the cyclic succession.
ये गुरु शिष्य परंपरा है.
Not only the cyclic succession, but also social order. We also try to please our superiors in our workplace.
और हम अपने श्रेष्ठ जनों को जो हमारे कार्य के जगह पे होते हैं उनको भी प्रसन्न करना है.
So that way we do it as an offering to Krishna, and when our superiors are pleased, then we know Krishna is pleased also.
उसी प्रकार से हम यहाँ पे अपने ऊपर श्रेष्ठ भक्तों को प्रसन्न करना चाहते हैं जो प्रसन्न होने के बाद हम समझ सकते हैं कृष्ण प्रसन्न हुए.
Who asked that question?
किन्होंने प्रश्न पूछा?
Does that answer your question?
क्या इसका उत्तर मिला आपको जिन्होंने भी प्रश्न पूछा था?
Would you like to say anything else? Would you like to say anything else?
I think Maharaj is having a different question.
Oh, it's a new question.
Yeah.
Oh, okay. Hare Krishna. Hare Krishna.
Question is that we see in so many places around Pune Christian missionaries are conducting these convent schools. And in those convent schools, they force their children to wear cross in their neck. And they force them to follow their tradition. And that's how children are drifting away from Krishna consciousness.
That's how what?
Our children are drifting away. They are going away from Krishna consciousness. So what ISKCON can do here? What we can do here?
We can don't send your kids to these schools, that's all. Have homeschooling. Or set up schools. Our society should have schools for teaching our children.
तो हमको उन बच्चों को वहां से निकाल निकाल के दूसरे जगह डाल देना चाहिए या हमारे समाज में एक ऐसी स्कूल की व्यवस्था कर सकते
हैं Yeah, Prabhupada wanted Gurukul training for our children within the Krishna conscious society.
प्रभुपाद जी चाहते थे कि हमारे समाज में गुरुकुल की व्यवस्था हो
And some places we have Gurukul, but I also know that in some places many of our devotees they homeschool their children.
तो कई जगह गुरुकुल की व्यवस्था है और मैं जानता हूँ कि कई जगह भक्त लोग घरों में ही एक स्कूल खोल के अपने बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं
I don't know if that homeschooling education is recognized by the government here or not. I know it is in America. One can homeschool their children according to a certain standard, and the children can receive what we say accreditation and what we say. In other words, they're giving credit as if they went to regular schools.
यहाँ का पता नहीं लेकिन महाराज बता रहे हैं अमेरिका में ऐसी व्यवस्था है कि घर में ही आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं और बाद में पढ़ाने के बाद उनको घर में ही बैठे बैठे सब डिग्री मिल जाएगी
Anyway, I always think it's, you know, this is one of my concerns that our children don't become polluted by secular education and the environment that the secular education exists in, such as, you know, a lot of the activities are not necessary and a lot of the activities are teaching sense gratification and sinful life, you know.
So, Maharaj bol rahe ki जो ऐसी जगह हो सकता है जहां पे पाप में जो है जीवन उसके और भोग का जीवन उसको छोड़कर जहां पे शिक्षण दिया जाता है
Just like eating meat, you know, many of the Christians don't follow that principle.
जैसे कि मांस भक्षण करना क्रिश्चियन लोग फॉलो नहीं करते नहीं अपनाते आजकल
But we, those of us brought up in the Hindu society or in the Krishna conscious society very strictly follow You know, no meat, no fish, no eggs, no onions, no garlic.
तो जो हिंदू समाज में या जो कृष्ण भावनावादी समाज में जो बड़े बच्चे बड़े हुए होते हैं वो मांस इत्यादि का भक्षण या नियमों का पालन करते हैं
So, I think the solution is setting up our own schools and as one, just like in Bombay we have Gopal's Gardens, we have a beautiful A highly developed educational program for children up to 6th or 7th standard.
तो मेरे ख्याल से एक इसका उपाय यह हो सकता है कि हमारा खुद का एक स्कूल हो जैसे कि गोपीनाथ में उनका एक स्कूल है गोपाल जी गार्डन करके यहाँ पे छठे स्तर तक की शिक्षा दी जाती है
Go, you can see how the school is all run by teachers who are devotees. They are qualified. That would give a chance for a lot of our devotees who have teaching skills to teach within the society also, to remain in association with devotees and to use their education in a spiritual way.
तो इस तरह से बच्चे हमेशा देखेंगे कि उनको जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो सारे भक्त हैं और इस तरह भक्तों को भी एक शिक्षण का एक बहुत बड़ा सेवा मिलेगा और इस तरह से शिक्षण हो सकता है
A lot of our ladies are teachers, you know, they can... They would find great happiness in teaching children on different levels.
कई सारी माताएं जो हैं शिक्षक हैं और उनको काफी प्रसन्नता होती है बच्चों को पढ़ाने में.
So, I think the solution is our own schools, really.
तो मेरे समझ से अपना स्कूल होना ही एक इसका उपाय है.
We can do it in Pune. I think maybe there's a plan. I don't know.
क्या हम इसे पुणे में कर सकते हैं या हमारा ऐसा कोई?
This is not only. Plan. Important, but it's essential.
ये एक महत्वपूर्ण चीज नहीं है बल्कि ये एक जरूरी चीज है.
And the children usually come out higher quality children, both materially, not only spiritually, but materially also.
तो बच्चे इस तरह से केवल आध्यात्मिक रूप से नहीं बल्कि भौतिक रूप से भी काफी ज्यादा प्रभावशाली बनते हैं.
So this would be, I think, a great step forward for our society to have a school here where we can, you know, develop it. And I'm sure you would get a lot of support from outside also.
और मेरे मतानुसार ये बहुत बड़ा कदम होगा ऐसा अपना एक स्कूल खोलना यहाँ पे और इसको बाहर काफी सपोर्ट भी मिलेगा.
Prabhupada wanted college level training for our society too.
और प्रभुपाद जी भी ऐसा चाहते थे. प्रभुपाद जी तो कॉलेज भी बनाना चाहते थे और अपने समाज में कॉलेज हो ऐसा भी.
Prabhupada coined the term Rupanuga Vedic College.
प्रभुपाद जी ने बोला रूपानुगा वैदिक कॉलेज इसका नाम होगा.
So all that is in Prabhupada's preaching, his ideas for expansion.
Maharaj, question.
Okay.
Maharaj, I have heard you and one more sannyasi preached a Mataji who was sentenced to 124 years of imprisonment. She was initiated later on. Could you tell us about it's not legible here, and other devotees who have come by prison preaching program.
Yeah, I remember that story clearly. You should repeat that in Hindi.
Maharaj ji se prashn puch rahe hain ki Maharaj ji ne ek Maharaj ji aur ek aur sannyasi ne milke ek mataji ko prachar kiya tha jinko 124 saal ki sajaye qaid ho gayi thi. Baad mein wo mataji ka diksha bhi ho gaya aur प्रश्न यह है कि क्या आप और भी जेल प्रीचिंग के बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे.
Our part of, in America especially, we have started ISKCON prison ministries.
अमेरिका में जेल प्रचार का एक अलग मंत्रालय ऐसा हमने बनाया.
So we send books to prisons. We also visit prisons and do programs. We published a bi-monthly newsletter called ISKCON Prison Ministry Newsletter. And we do other programs to uplift the prison population.
तो हम जेल में हम पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं. वहाँ जाके उनके लिए विशेष पुस्तकों को जो कि दो महीने में एक बार छपती है ऐसे पुस्तकों का भी प्रकाशन करते हैं और उनको जाके हम प्रचार करते हैं.
I was writing in reference to this case. I was writing this one girl. Who she developed the name Lakshmi. She learned about Lakshmi while she was in jail, and she thought that would be a nice name for her. So she called herself Lakshmi.
तो इस माताजी को प्रचार करते थे हम जो महाराज बता रहे हैं कि उसका नाम हमने बोला आप लक्ष्मी रख लो नाम अच्छा रहेगा.
She would write beautiful letters about Krishna consciousness. She would even write articles. She was in jail for about 24 years.
तो वो 24 साल तक जेल में थी और काफी सुंदर कृष्ण भावना भावित पत्र लिखती थी.
एंड देन एट वन टाइम हिज होलीनेस बीर कृष्ण महाराज हु आल्सो इज वेरी मच इन्वॉल्व्ड विद प्रिजन प्रीचिंग ही हैज अ फ्यू डिसाइपल्स ही वेंट टू विजिट हर इन प्रिजन.
एक बार परम पूज्य वीर कृष्ण महाराज जो भी वो भी साथ में जेल प्रीचिंग करते हैं जेल प्रचार करते हैं वो भी वहां गए थे.
एंड ही इंस्पायर्ड हर एंड देन ही शी टुक इनिशिएशन फ्रॉम हिम.
उन्होंने उनको प्रेरणा दी बाद में माताजी ने दीक्षा लिया.
एंड एक्चुअली दैट वाज इनिशिएशन केम लेटर ऑन
बट दीक्षा बाद में हुई.
बट द डे दैट ही केम टू विजिट हर द गवर्नर ऑफ द स्टेट ड्रॉप्ड हर सेंटेंस फ्रॉम 90 years to she was sentenced to 90 years in prison. She was her sentence was dropped from 90 years to 40 years.
जिस दिन महाराज गए उनको प्रचार करने के लिए उसी दिन उनका 90 साल की सजा को गवर्नर ने कम करके 4 साल कर दिया.
The same day, no, the governor didn't know anything. He didn't know that she was being visited by a Hare Krishna, and it's just that some By Krishna's arrangement,
she
got the mercy.
ये ठीक उसी दिन हुआ जिस दिन महाराज गए. गवर्नर को पता नहीं था कि ये हरे कृष्ण भक्त है इसलिए कम करना चाहिए. ये कृष्ण की दिव्य शक्ति से हुआ.
And in America, if she had already served 24 years, so if you serve more than half your sentence, then you're eligible what is called for parole. So within a few months, she was out on parole.
तो अगर अमेरिका में ऐसा नियम है कि अगर आधा आपने उसका कैद की सजा काट ली है तो उसके बाद कुछ परल करके कुछ ऐसी व्यवस्था है जिससे आप कुछ महीनों में बाहर भी आ सकते हैं.
She went to New Orleans and she got involved with a temple and a few months later she got initiated. Her name became Sarva Lakshmi Mai.
तो वो न्यू ऑर्लीन्स चली गई. न्यू ऑर्लीन्स में उन्होंने सेवा करना चालू किया मंदिर में. हरे कृष्ण बच्चे भक्तों के दीक्षा हो गया और उनका नाम सर्व लक्ष्मी मई हो गया.
And she's very serious practitioner of Krishna consciousness. This was about 3 years ago. She's still very serious practicing her Krishna consciousness.
वो काफी गंभीरतापूर्वक पिछले 3 वर्षों से सेवा कर रहे हैं.
So this is the result of. So anyone can become Krishna conscious.
तो कोई भी कृष्ण भक्त बन सकता है. Another question.
Anyone else? Any other questions?
Question. Cheated. Hare Krishna Maharaj. Question is, now the present days, in this age, those who have taken birth in the Brahman caste, they have a great conviction about their birth in the higher caste. Without having any Brahmanical qualification, they are considering the learned persons or brahmanas to themselves. Not only that, but also they are not accepting any person who have accepted the varnashram dharma according to Vedic injunctions. I wanted to get more clarification about it, that how they will be convinced that by birth they are not brahmanas. Prashna hai ki aaj ke समय में काफी लोग जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं उनको ऐसी एक बहुत ही धारणा रहती है कि हम ऊंचे हैं और तो इनको कैसे हम समझा सकते हैं कि आप ब्राह्मण नहीं है वास्तव में.
हाउ विल दे बी कन्विंस्ड.
हाउ वी कैन कन्विंस देम दैट बाय बर्थ दे आर नॉट ब्राह्मण्स.
Well, Prabhupada used to use the example, if you are born in a family of doctors, does that mean you're a doctor?
Prabhupada ji udaharan dete hain ki agar aap doctor ke parivar mein janm lete hain to aap doctor nahi ban jate.
You have to go to medical school, you have to pass the exam, then you have to set up your practice and then you're actually a doctor.
आपको मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको खुद का प्रैक्टिस खोलना पड़ेगा, तब जाके आप डॉक्टर बनोगे.
So if someone's born in a family of doctors but never goes to school, never practices being a doctor, if you're sick, would you go to him for treatment?
तो कोई ऐसा व्यक्ति जो कि डॉक्टर के परिवार में जन्मा है, कभी कॉलेज मेडिकल कॉलेज गया नहीं, पढ़ाई किया नहीं और सीधा जाके अपना एक प्रैक्टिस खोल देता है, क्या आप ऐसे डॉक्टर के पास बीमार होने के बाद जाएंगे?
He may hang out his sign, I'm a doctor. I was born in a family of doctors.
और उन्होंने एक बोर्ड लगाया है, मैं एक डॉक्टर हूं क्योंकि मैं डॉक्टर के परिवार में जन्म लिया हूं.
No, you.
नहीं.
He's quack.
वो एक ठग है.
Quack. You have to prove by your qualities and your education that you are a Brahmin.
आपको आपकी योग्यता और गुणों के आधार पर सिद्ध करना होगा कि आप एक डॉक्टर हैं।
If you're born in a Brahmin family and you have these qualities, that's nice, that's perfect.
तो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना है इसकी योग्यता और गुण नहीं है।
But it says in the scriptures a Brahmin will not accept employment from anyone.
तो हम शास्त्रों में देखते हैं कि ब्राह्मण जो है किसी के भी अधीन होकर उनकी नौकरी नहीं करते कभी दूसरों
को. Brahman will starve before he works for anyone else.
ब्राह्मण जो है भूखा मर जाएगा लेकिन दूसरे की ऐसी नौकरी नहीं करेगा.
So a Brahman is not a beggar.
तो ब्राह्मण जो है भिखारी नहीं है.
I am a Brahman, I have 2-cent thread, what do? I pull thela, I pull rickshaw.
मैं ब्राह्मण हूं क्योंकि मेरे पास एक जनेऊ लटक रहा है मेरे गले में और मैं क्या करता हूं, मैं ठेला खींचता हूं.
It's not Brahman.
ये ब्राह्मण नहीं
है. You have to, Brahman means patan, patan, yajan, yajan, dana, pratigraha. These are the qualities. So you, everything is judged by qualities, not by birth.
तो ये ब्राह्मण का कर्तव्य है पठन पाठन यजन याजन दान और परिग्रह. हर चीज जो है गुण और कार्य से आधारित होता है.
And there are scriptural statements to support these principles.
और शास्त्रों में इसके ऊपर इसको सपोर्ट इसको जोड़ने इसको मजबूत बनाने वाले तथ्य भी आते हैं.
Now if you're born in a Brahmin family, obviously you have a good birth.
अगर आप ब्राह्मण परिवार में जन्म ले रहे हैं तो आपका जन्म तो जरूर ही अच्छा है.
You have a head start. You have a head start.
Head scar.
Yeah.
आपके सर के ऊपर जो है वो एक तारा है. Scar. एक अच्छी अच्छी बात है. एक अच्छी शुरुआत है.
This is American English.
ये अमेरिका की अंग्रेजी है.
Sometimes brahmacharis don't have head starts.
कभी कभी ब्रह्मचारियों को ऐसा नहीं होता.
In other words, being born in a Brahmin family is a plus. It's a benediction.
तो दूसरे शब्दों में ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना जो है वो एक benediction, एक आशीर्वाद है.
But it doesn't mean, it means you're in a good position, that's all. It means you're in a good position.
आपकी जो स्थिति है वो अच्छी है, बस इतना ही है.
But you have to move forward from that and develop that position.
लेकिन वहां से आपको आगे बढ़ना होगा.
Then you have to take the next step. You have to become qualified.
लेकिन उससे आगे बढ़ के आपको उसके लिए योग्य बनना पड़ेगा.
Just like a person who is born in a doctor family, his father's a doctor, maybe his mother's a doctor, so he's around doctors all his life. He can learn easy. How to become a doctor.
जैसे कि कोई डॉक्टर के परिवार में जन्म ले, माँ और पिता दोनों डॉक्टर है, तो उसके जीवन में डॉक्टर बनना आसान होगा क्योंकि वो सीख सकता है.
If he doesn't learn and become qualified, then even though he has a good position, he's not qualified to act as a doctor.
लेकिन अगर वो सीखता नहीं है, वो उनसे सीखता नहीं, तो ऐसी स्थिति का लाभ उठा नहीं पाता है और डॉक्टर नहीं बनता.
Obviously, birth is good, but it's only the beginning. It's not perfection.
तो जो जन्म है वो हमें अच्छा है, लेकिन ये उसको सिद्धि तक नहीं पहुंचा सकते.
Now the scriptures all say if one is born in a sudra family or less than a sudra, if he has brahminical qualities, he can act as a brahmin.
तो शास्त्र में ये भी बताया गया है कि अगर कोई शूद्र या उनसे भी नीचे के परिवार में जन्म ले, लेकिन उनके अंदर अगर ब्राह्मण की योग्यता है तो वो ब्राह्मण कहलाएंगे.
In fact, he's better than a brahmin.
वास्तव में ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ होता
है. Because who he's better than one born in a brahmin family who doesn't have the qualities.
तो क्योंकि ये योग्यता के आधार पे है, और अगर योग्यता नहीं तो ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण के परिवार में भी ब्राह्मण नहीं हो सकता.
सो इट्स ऑल बाय क्वालिटीज.
तो इसलिए सारी चीजें योग्यता के ऊपर है,
नॉट बाय बर्थ, नॉट बाय पोजीशन,
न कि जन्म और स्थिति के अनुसार.
वन हैज टू शो द क्वालिटीज. एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन क्वालिटीज. व्हाट आर योर क्वालिटीज, व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस.
व्यक्ति को योग्यताएं दर्शानी पड़ेंगी कि आपके अंदर क्या योग्यता है.
एनीबॉडी कैन पुट अ साइन आउट, I'm a doctor. I'm a Brahmin.
कोई भी ऐसा एक बाहर बोर्ड लगा सकता है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ.
But you have to prove by your example.
लेकिन आपको आपके उदाहरण से इसको दर्शाना पड़ेगा.
Example is higher than precept.
उदाहरण जो है वो अवधारणाओं से बढ़ के.
Anyone can speak, but it's your actions that really make the difference.
कोई भी बोल सकता है, लेकिन आपकी क्रियाएं जो है उससे बढ़ चढ़ के बोलती
है. Yes, there's a question here.
चीट.
I'm sorry, I can't hear so good. Speak slowly.
If any other classes of Varnashram Dharma assisted Brahman classes of devotees in their spiritual activities directly or indirectly, what they get in return, devotional credits or pious material credits.
Hmm. Did you understand the question?
If somebody is taken birth in Brahmana family, so what credit do he gets? Spiritual or... Okay, if any of the classes assist a Brahmana, what credit do they get? This is the question? Devotee? So, whether they get a spiritual credit or whether they get material pious credit?
All these material qualifications are simply opportunities to use in the service of the Lord. Otherwise, your material qualities bring you towards, you know, a lower birth in your next life.
Prashna ye hai ki, should I repeat the question? Prashna ye hai ki, agar koi brahman ko sahayata karte hai, to unko adhyatmik labh milega ya bhautik subh sakam labh milega? To uttar ye bol rahe hai ki, अध्यात्मिक या भौतिक जो है वो किसकी सेवा कर रहे हैं इसके ऊपर है.
The goal of human life, atato brahma jigyasa, is to know the Lord and serve the Lord. The goal is not to be to have a good material birth.
जीवन का लक्ष्य ये है कि अच्छा जन्म मिले ये नहीं है, बल्कि ब्रह्म जिज्ञासा ये जो है जीवन का लक्ष्य है.
So anyone in any situation, their birth is not so important. What is it means, what they do with their life, that's all.
So kisi ke jeevan mein janm itna mahatvapurna nahi hai, balki wo kya kar rahe hai ye zyada mahatvapurna.
Sometimes we see people who are highly qualified materially, they become degraded, and those who have no material qualifications, they take up spiritual life.
Kabhi kabhi hum dekhte hain ki jo bhautik drishti se patan hua hai jinka, wo bhi kafi adhyatmik unnati karte hain, lekin jo adhyatmik roop se uche jagah se aaye hain, wo bhi पतन कर की तरफ मुड़ जाते हैं.
So good birth is not guaranteed that you're going to be more spiritual.
तो जो ऊंचा जन्म है ये कोई गारंटी नहीं देता है कि आप आध्यात्मिक बन ही जाएंगे.
No, it's by the mercy of the Lord. It's by somehow by the mercy of the Lord's pure devotee that one comes in contact with a spiritual movement, whether they're a Sudra, whether they're a Brahmin, whatever. It's by the Lord's mercy. And then, if they take that mercy, then they can actually perfect their life.
तो ये भगवान की कृपा से संभव है, ना कि अपने जन्म के द्वारा. अगर कोई भगवान की कृपा को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो वो जीवन की सफलता की ओर बढ़ सकते हैं.
In fact, in this age, Lord Chaitanya is reaching out to the most fallen to give them a chance to practice spiritual life.
और इस युग में तो भगवान से चेतन महाप्रभु सबसे पतित जीवों की तरफ जाके जीवन की सफलता की कुंजी पकड़ा
है. Lord Chaitanya's mercy is specifically geared to those who are the lowest of the low.
चेतन महाप्रभु की जो मर्सी है वो विशेष तौर से जो सबसे ज्यादा पतित लोग हैं उनके तरफ ज्यादा है.
He's reaching out to people who have no culture, no education, no samskaras, nothing, and saying, here, chant Hare Krishna, and become the topmost Brahmin.
चेतन महाप्रभु कहते हैं कि ये नहीं देख रहे कि आपके जन्म क्या है, स्कूल क्या है, इत्यादि इत्यादि क्या है, बल्कि वो सबसे ज्यादा पतित लोगों के पास जाके ज्यादा सीधा बोलते हैं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए.
सो डोंट पुट सो मच एम्फेसिस ऑन बर्थ. वी वर जस्ट डिस्कसिंग दिस इन रिलेशनशिप टू दिस वर्स, बट द एम्फेसिस शुड बी ऑन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, दैट्स ऑल.
तो जन्म पे इतना जोर मत दीजिए, ज्यादा जोर इस पे देना चाहिए कि आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो. Here's a question.
You see, many of us who've been born in Western countries, still we're taking to Krishna consciousness. Why? The mercy of Srila Prabhupada, that's all.
अब देखिए कि हमें से कई जो है पाश्चात्य जगत में जन्म हुआ है, फिर भी हमने कृष्ण भावनाओं को अपना लिया. कैसे की? क्योंकि प्रभुपाद जी की कृपा के द्वारा. Question is, many persons object to restriction, no onion, no garlic. How do we justify any verse or shastric quote for this? कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि इतना सारा ना ना क्यों, ये कांदा भी नहीं और लहसुन भी नहीं, इसको हम कैसे लोगों को समझा सकते हैं? क्या कोई शास्त्रीय कोट उद्धृत कर सकते हैं इसके?
There is none.
ऐसा कोई नहीं है.
It's the guru's statement.
ये गुरु के द्वारा कथन दिया गया.
Prabhupada has given us this principle.
प्रभुपाद जी ने ये नियम बनाया
बेस्ड ऑन साइंटिफिक एनालिसिस that if one wants to practice spiritual life successfully these things will are an impediment in the practice
prabhu ji ne ye vaigyanik tarah se dekha ki ye agar aap bhakti mein pragati karna chahte hain to ye dono cheeze achhi nahi
and they're not good for the body they're in the mode of passion
aur ye sharir ke liye acha nahi hai rajogun mein se prabhavit
hai actually there is one scriptural statement it's in bhagavad gita
bhagavad gita mein hai aisa kuch
yeah I'll read the verse
श्लोक में पढ़ूंगा अभी
इट्स इन द 17th चैप्टर ऑफ गीता
17वें अध्याय में है गीता में
वर्स नंबर 3 verses 8 9 and 10
8 9 और 10 17वां अध्याय
वर्स 8 फूड्स
आठवां श्लोक है
फूड्स डियर टू दोज इन द मोड ऑफ गुडनेस इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ प्यूरिफाई वन्स एग्जिस्टेंस एंड गिव स्ट्रेंथ हेल्थ हैप्पीनेस एंड सैटिस्फैक्शन सच फूड्स आर जूसी फैटी होलसम एंड प्लीजिंग टू द हार्ट
तो जो सत्वगुण में जो खाद्य पदार्थ है वो फ्रेश ताजे होते हैं और रस से भरे होते हैं और वो आयु को बढ़ाने वाले होते हैं और मोटे करते हैं व्यक्ति को और स्वस्थ करते
हैं He's going to give you a Gita here. 17:8
जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वो आयु बढ़ाने वाला जीवन को शुद्ध करने वाला बल स्वास्थ्य सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है ऐसा भोजन रसमय स्निग्ध स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है
वर्स नंबर 9 फूड्स दैट आर टू बिटर टू साउर साल्टी हॉट पंजेंट ड्राई एंड बर्निंग आर डियर टू दोज इन द मोड ऑफ पैशन सच फूड्स कॉज डिस्ट्रेस मिजरी एंड डिजीज
अत्यधिक तिक्त खट्टे नमकीन गर्म चटपटे शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं ऐसे भोजन दुख शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं
Foods prepared more than 3 hours before eating, food that is tasteless, decomposed, putrefied, food consists of remnants of untouchable things, are dear to those in the mode of darkness.
खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं
There's a very long purport describing in detail these three types of foods.
काफी लंबा तात्पर्य है इन तीनों अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थों को बताने के लिए
So a devotee acts in goodness.
तो भक्त जो है वो सतोगुण में कार्य करता है
The goal, the mode of goodness is leads to transcendence.
और जो सतोगुण है वो दिव्यता की तरफ जाता है
सो इन द मोड ऑफ ईटिंग वी ऑल्सो ईट फूड्स दैट फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ गुडनेस
इसलिए खाते समय हम सतोगुणी खाद्य पदार्थ खाते हैं
व्हिच आर फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिल्क प्रोडक्ट्स ग्रेन्स लेग्यूम्स लाइक दैट
जो कि फल सब्जियां अन्न दूध और बीन्स इत्यादि
सो फूड्स लाइक अनियंस एंड गार्लिक दे फॉल इन द मोड ऑफ पैशन
और जो कांदा लहसुन है वो रजोगुण में आता है
They cause distress to the body. They excite the passions of the body.
वो शरीर को तकलीफ देने वाला और रजोगुणी प्रवृत्तियों को बढ़ाने वाला होता है.
Yeah, garlic increases sexual desire.
जो लहसुन है वो काम भोग की प्रवृत्तियों को बढ़ाता है.
And also, it is explained that just recently there was a medical report showing that there are many harmful effects. For those persons who eat garlic,
हाल में एक वैज्ञानिक आविष्कार किया गया पता लगा कि लहसुन जो है वो शरीर के अंदर काफी हानिकारक प्रभाव करता है
So onions and garlic may taste nice,
ये स्वाद के लिए अच्छा हो सकता है
But as far as making progress in spiritual life, they make it more difficult to practice the process.
जहां तक आध्यात्मिकता को अपनाने की बात है इसको वो कठिन कर देते हैं
If you want to chant, if you want to read, If you want to make your mind peaceful, these foods stimulate and agitate the senses.
हम जब करना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं और आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं लेकिन ऐसे खाद्य पदार्थ जो है वो मन और इंद्रियों को उत्तेजित कर देते हैं.
So that's why we don't take them.
इसलिए हम उन्हें लेते नहीं.
So the principle is what's beneficial for spiritual life we accept, what's unbeneficial is rejected.
तो नियम यह है कि जो भी भक्ति के लिए अच्छा है उसे अपना लें और जो नहीं है उसको छोड़ दें.
Okay? And the moods, foods in the mode of ignorance are like meat, you know, putrefied things, things that are unhealthy, you know, people eat like, you know, like dead bodies or stuff like that. That's mode of passion, mode of ignorance.
और जो तामसिक भोजन है जैसे कि सड़ा हुआ मांस वगैरह जो कि एकदम तमोगुणी है वो सब तामसिक में आता है.
So you can read this verse, three verses from Bhagavad Gita chapter 17 verses 8, 9 and 10. The purport gives you a nice explanation.
तो ये 17वां अध्याय के 8, 9, 10 को पढ़ के आप इसको ज्यादा समझ सकते हैं.
So part of practicing spiritual life is we want to be healthy too. Good health is conducive to practice spiritual life.
तो आध्यात्मिक जीवन को जब हम अपनाते हैं तो इसमें एक भी ये भी चाहिए कि हम स्वस्थ रहें जिससे कि हम अच्छे तरह से भक्ति को भक्ति के नियमों को पालन कर पाएं.
Any ladies have questions? You can translate that and ask any ladies if they have the question.
कोई माताएं प्रश्न पूछना चाहेंगी?
No? Okay. Anyone else? Any other questions?
कोई और पूछना चाहेंगे? Question is, you said in the lecture that we have to please the devotees to please Krishna. But if we just please devotees and not please other living entities and just please Krishna, then will Krishna will please?
Yes.
हाँ हाँ बोल रहे महाराज जी.
Yeah.
कृष्ण प्रसन्न होंगे केवल भक्तों को प्रसन्न करने से.
Does that answer your question?
तो इसका उत्तर इसके हिमांश.
Yeah, by pleasing Krishna, all living entities are pleased. But the process is given by the acharyas that we please Krishna's representatives, who are in line to please the Lord. In other words, there is a system for pleasing Krishna.
हाँ, कृष्ण को प्रसन्न करने से सारे जीवों को हम प्रसन्न कर सकते हैं. जैसे इतर जीव जो हैं, वो सब प्रसन्न हो जाते हैं अगर कृष्ण प्रसन्न हो जाए. और कृष्ण को प्रसन्न करने का रास्ता है कि हम कृष्ण के भक्तों को प्रसन्न करें.
But that doesn't mean you can go out and please your family and your boss and so many things and Krishna is pleased.
ये नहीं कि आप अपने परिवार वालों को बॉस को प्रसन्न करें और कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे.
You have to please Krishna's representatives.
आपको कृष्ण के प्रतिनिधियों को प्रसन्न करना पड़ेगा.
The bona fide spiritual master or those persons who have been given power by the bona fide spiritual master to act in that capacity.
जो प्रमाणिक गुरु हैं उनको या नहीं तो प्रमाणिक गुरु ने जिनको प्रतिनिधि बना के आपके पास दिया है उनको.
Such as the temple president, temple authorities like that.
जैसे कि टेम्पल प्रेसिडेंट हैं या जो यहाँ अथॉरिटी हैं इस तरह.
Like that. So even if you live in the world, you should somehow or other connect with one of Krishna's representative who is in the position to accept your service and who can offer that service to the Lord like that.
तो इस तरह से हमारा जो सेवा है वो एक कनेक्शन उसका एक कनेक्शन हो जाता है भगवान से.
So Krishna says he who says he's my devotee is not my devotee, but who is a devotee of my devotee, he is my devotee.
Krishna Bhagavan कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त नहीं हैं, लेकिन जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वो मेरे सच्चे भक्त हैं.
So if we please Krishna's devotee, then Krishna is pleased.
तो कृष्ण के भक्तों को अगर हम प्रसन्न कर रहे हैं तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं.
Because Krishna's devotee only wants to please Krishna.
क्योंकि कृष्ण का जो भक्त है वो केवल कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है.
So 1, 2 + 2 = 4, 3 + 1 = 4.
दो और दो चार होते हैं, तीन और एक भी चार होता है.
Same thing.
दोनों एक ही.
So if you're pleasing Krishna's authorized representative, Krishna is pleased.
तो कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधियों को अगर हम प्रसन्न करते हैं तो कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं.
Just like you have to pay the electrical bill.
जैसे कि आपको बिजली का भरना होता है.
You don't go to the head of the company to give your money. You give it to the representative.
तो आप कंपनी के हेडक्वार्टर में जाके नहीं देते हैं, आप उनके जो प्रतिनिधि आपके तरफ होते हैं वहां देते हैं.
Then he passes it on.
फिर वो आगे जाता है.
So in the same way, the Lord's devotees pass on your service to the Lord.
उसी प्रकार से भगवान के जो प्रतिनिधि हमारी सेवाओं को भगवान तक पहुंचाते हैं.
Okay, should we stop here? We can have kirtan.
अभी कीर्तन करेंगे.